धवला पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 19। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सौवसाऊणं, लोया लोयपयासं, गोदमथेरं पुणोजिनं वीरं, नम्यूणखेत्तसुत्तं, जहोवये संपयासिमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है। इसमें जो प्रथम खंड जीवस्थान नामक है, उसमें अपना विषय है क्षेत्रानुगम का, और यह चौथी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 98 पर हम आ गए। 98
नया पैराग्राफ।
यहाँ काय मार्गणा की बात अपनी चल रही थी, और उसमें जीवों के अवगाहना के भेद उन्होंने हमको हमने उसको देखे थे। देखो यहाँ हाँ देखो, कल हमने जो 64 भेद देखे थे अवगाहना से, अब उसके आगे क्योंकि प्रश्न क्या पूछा गया था, देखो पेज नंबर 94 पर नीचे की शंका,
वनस्पति कायिक।
हाँ, वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त की जघन्य अवगाहना से, द्विंद्रिय पर्याप्त की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणियों किस प्रमाण से जाना जाता है, ये यहाँ पूछा गया था। उसके उत्तर में उन्होंने अवगाहना का जो 64 अवगाहना के जो अल्प गुणीय भेद हैं, जघन्य से उत्कृष्ट तक के, वो सब 64 यहाँ बताए। तो उसमें हमने देखा था 50 और 51 नंबर में, पेज नंबर 97 पर हमने नंबरिंग किया था, आपके उसमें है क्या? हाँ, 50 नंबर है ना यहाँ पर, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर, ये अप्रतिष्ठित प्रत्येक की बात है, उसके पर्याप्त की जघन्य अवगाहना, और उससे द्विंद्रिय की द्विंद्रिय पर्याप्त की जघन्य अवगाहना, वो असंख्यात गुणी है, ये उनको बताना था। वो पूरा ही उन्होंने अल्पमहत्व का टेबल बता दिया, दंडक कहते उसको, अल्प अवगाहना का दंडक। अब इसके आगे अपना विषय यहाँ से शुरू होता है, 98 पेज पर नया पैराग्राफ। आपका कोई प्रश्न है? आवाज बहुत
दंडक यानी क्या बताया?
दंडक यानी उसकी एक्चुअली लिस्ट कहेंगे ना, उसका दंडक यानी उसकी जो कुछ कोष्ठक नहीं कहते उसको, दंडक यानी उसका, जैसे पहले भी आता था ना ये कोई बंध योग्य प्रकृति, उसका दंडक कहेंगे, उदय योग्य उसका दंडक कहेंगे, यानी उसकी लिस्ट बताएंगे, वो विशिष्ट जो ये 64 जो भेद है, तो भेदों का कथन किया, इसको कहेंगे ये अवगाहना का दंडक। अब यहाँ पढ़ेंगे, एक सूक्ष्म जीव से दूसरे सूक्ष्म जीव की अवगाहना का गुणकार। इसके लिए अगर जीवकांड की पुस्तक आपके सामने हो तो और क्लियर होगा, आप अंदर से पुस्तकें निकालना, दो तो है वहां पर जीवकांड की पुस्तकें, या ऐसा कीजिए ना, अभी निकाल के पर वो खोल नहीं सकते, नहीं जीवकांड की पुस्तकें इनको दे दें,
हाँ
जाड़ी वाली डी और यू, हाँ
वो,
और एकदम राइट साइड में एक
है, और एक है ब्लू कलर के,
नहीं मगर निकालेंगे तो कवर में है, ट्रैकिंग में
पेज नंबर
188 था।
हाँ 188।
मैं आपके पास पुस्तक भेज दूंगी। ये देना उनको, ये दो जनों को। हाँ आप ये देखना, देखो पहला जो कोठा है ना जिसके एक नंबर दिया है वहां पर छपा हुआ, उसमें एक से पांच जो है वो सारे सूक्ष्म अपर्याप्त है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म की अवगाहना अभी ये पढ़ेंगे यहाँ पर। एक सूक्ष्म जीव से दूसरे सूक्ष्म जीव के अवगाहना का गुण कार्य, कितने गुण है तो असंख्यात गुणा कह दिया, वो कितना है तो अवलिक असंख्यात अभाव है। अब आप टेबल में देखना, आपके सूक्ष्म जीव से बादर जीव की अवगाहना, पहले कोठे से दूसरे कोठे में सारे बादर है, बादर अपर्याप्त है। पहले कोठे में सूक्ष्म अपर्याप्त थे, यहाँ बादर अपर्याप्त है। तो सूक्ष्म से बादर की जब कहेंगे तो पल्ले के असंख्यात विभाग, पल्लवों का असंख्यात अभाव है। बादर जीव से सूक्ष्म जीव की अवगाहना का गुणकार, अब बादर से सूक्ष्म कहाँ देखेंगे आप? चौथे में क्या आया है? काय के उत्कृष्ट हो, उत्कृष्ट नहीं है,
पर्याप्त की सूक्ष्म जगन्य,
पर्याप्त की जगन्य है। पर वो हम पहले कहाँ गए थे? बादर तक गए थे। पहले कोठे में सूक्ष्म था, दूसरे और तीसरे कोठे में बादर जीवों की बात है। अब बादर से फिर सूक्ष्म की बात कर रहे हैं,
यानी यहाँ पर
पर्याप्तों की।
हाँ। यहाँ पर ये बात हमें समझनी है कि बादर जीव भी सूक्ष्म जीवन से
बड़े हो सकते हैं,
छोटा हो सकता। हाँ। है आगे बात आएगी, वो अवगाना की
रेंज अलग है ना,
यहाँ तक
कि यहाँ से यहाँ तक रेंज है और बादर की यहीं से शुरू हो जाती है और आगे तक चली जाती है, ऐसा होता है।
यानी पंचेंद्रिय जीव जो है वो भी एकेंद्रिय जीव से छोटा हो सकता है अवगाना में, ये बात कल नक्की हो गई थी।
वो सारे अपर्याप्तों के बीच में अभी देखें, दूसरे तीसरे कोठे में क्या है? बादर बादर ही है। हाँ। तो अभी बादर से जब सूक्ष्म की अवगाहना बताएंगे, चौथे कोठे, तीसरे से चौथे कोठे में एक से आगे जाना है, वहाँ गुणकार है। देखो फिर अभी हम जो पढ़ रहे थे ना, पढ़ाई के साथ साथ उसको पढ़ेंगे। जीव कांड का पेज नंबर जरा 188 है शोभा, आपके सामने रखना। कल निकाला था ना 188 पेज। हाँ तो उसमें पहले कोठे में सभी सूक्ष्म है, एक सूक्ष्म से दूसरा सूक्ष्म का कितने गुणा है तो दोनों को कहेंगे असंख्यात गुणा। वो असंख्यात का प्रमाण है सूक्ष्म से सूक्ष्म में आवली का असंख्यात अभाव गुणा। सूक्ष्म से जब बादर को हम चलेंगे पहले कोठे से दूसरे कोठे के छह नंबर 5 से 6 में पल्ले का असंख्यात अभाव। अब दूसरे कोठे में भी सारे बादर है, तीसरे में भी बादर है, चौथे कोटे में फिर सूक्ष्म पर्याप्तों की जघन्य अवगाहना है। तो बादर से सूक्ष्म की बात चलेगी। देखो अभी यहाँ तीसरी लाइन अपने पैराग्राफ की, बादर जीव से सूक्ष्म जीव के अवगाहना का गुणकार आवली का असंख्यात अभाव है। या ख्याल में ना, तीसरे कोटे से चौथे में जाएंगे तो बादर जीव से अन्य बादर जीव के अवगाहना का गुणकार पल्लवपुम का असंख्यात अभाव है। यानी दूसरे कोठे में हमने 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 ये जो गुणकार है हाँ वो कितना है तो पल्ले का असंख्यात अभाव। बादर से बादर की अवगाहना का गुणकार संख्या समय है, अर्थात यानी पर्याप्तों में हमने देखा बादर द्विंद्रिय पर्याप्त वगैरह, जहां संख्यात गुणा कहा था, संख्यात गुणा तो उसको, क्योंकि ये आवली और पल्ल्य ये समयों की संख्या है इसलिए वहां पर भी संख्यात गुणा इतना ही कहना था, उसको संख्यात समय कह देते हैं। अर्थात बादर पर्याप्त द्विंद्रिय जीव की जघन्य अवगाहना से 51 नंबर पर होगा शायद, कितने नंबर है? 51 नंबर पर था, 51 नंबर देख लो आप, कोठा नंबर आप में होगा
97
ऊपर 10वां नंबर का कोठा होगा। मैं बताती हूँ आपको, दसवें कोठे में होना चाहिए, है ना। दसवें कोठे में 51 नंबर पर द्विइंद्रिय पर्याप्त की जघन्य उगाना है। तो कहते हैं द्विइंद्रिय पर्याप्त बादर पर्याप्त द्विइंद्रिय जीव की जघन्य उगाहना से बादर पर्याप्त तीन्द्रिय आदि जीवों के उगाहना का गुणकार संख्यात समय है। संख्यात है ऐसा कहो या संख्यात समय कहो, बात एक ही है। अब आगे बढ़ते शंका। यहाँ पर बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त की जघन्य उगाहना घनांगुल के असंख्यात वे भाग कही है, सो भले ही रही आवे, किंतु प्रत्रांगुल के भागहार से घनांगुल का भागहार संख्यात गुणा होता है, ये कैसे जाना जाता है? उसका समाधान ये पहले बता चुके हैं उसको। बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीव, जब उसमें निगोद प्रतिष्ठित नहीं लिखा है तो ये अप्रतिष्ठित प्रत्येक की बात है। वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और स्वस्थान पदों की अपेक्षा तिर्यक लोक के संख्यात वे भाग में रहते हैं। इस प्रकार के गुरुपदेश से जाना जाता है कि प्रत्रांगुल के भागहार से घनांगुल का भागहार संख्यात गुणा है, यानी उनकी राशि नहीं, बादर निगोद भी होते हैं वनस्पति कायिकों में, जो साधारण शरीर नहीं निगोद और प्रत्येक शरीर निगोद में भी सूक्ष्म निगोद और बादर निगोद, उसमें भी पर्याप्त 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 पर्याप्त। अब जो प्रत्येक शरीर वाले हैं उसमें भी प्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, और दोनों में ही पर्याप्त 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 पर्याप्त, इतने वैरायटी है उसमें। तथा लास्ट दो लाइन, उक्त इसी गुरुपदेश से बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर की अवगाहना में जीवों की अधिकता भी जाननी चाहिए। यानी उनकी संख्या भी,
संख्या से बात तो बहुत कम।
हाँ, किसका? तिर्यक लोक का संख्यात भाग लिया। क्योंकि उनसे वो आगे वाली ज्यादा इंद्रियों की अवगाहना अलग ली ना, ज्यादा होगी असंख्यात गुणा। अब देखो 99 पर सूत्र में बादर निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त जीव क्यों नहीं कहे? सूत्र में क्या दिया था? बादर वनस्पति का यह पत्ते शरीर 93 पेज पर सूत्र था, वहां बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर इतना ही लिखा था, ये ना 23 नंबर के सूत्र में मिला। हाँ, तो उसका समाधान नहीं, क्योंकि बादर निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त जीवों का प्रत्येक शरीर पर्याप्त वनस्पति जीवों में अंतर्भाव हो जाता है। अच्छा, इन्होंने बादर निगोद प्रतिष्ठित अलग कहने से वो अलग लिया, और यहाँ पर अप्रतिष्ठित में दोनों को लिया, इसलिए उन्होंने अप्रतिष्ठित नहीं लिखते हुए केवल पर्याप्त लिख दिया। यानी प्रत्येक शरीर ही में दो भेद करेंगे, प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, और जहां जहां वो केवल उन्होंने बता दिया है वहां तो प्रत्येक शरीर इतना ही लिखा है, और सूत्र में क्यों नहीं लिखा तो इसी में उनको गर्भित कर दिया, ऐसा उनका यहाँ कहना है। जहां अलग से बतानी है अवगाहना वगैरह वहां अलग से बता दे, और यहाँ उसको उसी में इंक्लूड करके गर्भित करके बता दिया। उनका भागहार संख्यात गुणा, प्रत्रांगुल का अर्थ होता है अंगुल गुणा अंगुल, और घनांगुल का अर्थ होता है अंगुल गुणा अंगुल गुणा अंगुल। अंगुल असंख्यात संख्या है, परंतु देखो देखो उनका प्रश्न ये, अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा क्या, इस प्रकार के ग्रुप देश से जाना जाता है कि प्रत्रांगुल के भागहार से घनांगुल का भागहार संख्यात गुणा, ये लिखा है ना यहाँ पर, उसका अर्थ क्या होता है? तो उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पेज नंबर 94 पर ये बात उन्होंने बताई थी। देखो ऊपर से दूसरा समाधान है और उसके फिर बाद में और भी पीछे चले जाएंगे, पर यहाँ हमको देखना है। यह कोई दोष नहीं क्योंकि घनांगुल का भागार प्रत्यांगुल के भागार से संख्यात गुना है, यहाँ लिखा था ना। अब ऐसा यहाँ क्यों लिया है उसके भी पीछे चलो। पेज नंबर 93 से ये बात चली आ रही। देखो नीचे से ये जो सूत्र का अर्थ जहां दिया था उसको दोबारा पढ़ लेते हैं। आप में से कितने लोग नहीं थे, 23 नंबर का सूत्र क्या था वहां से फिर पढ़ते हैं। देखो बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीव, ये काय मार्गणा चल रही है। जब हमने बादर पृथ्वी का एक इतना ही कह दिया तो बादर पृथ्वी का एक कहने से क्या होता है, उसमें पर्याप्त भी आते अपर्याप्त भी आते। तो उन जीवों का क्षेत्र कितना, तो कहते पूरा लोक। पूरा लोक क्यों बताया, मारणांतिक और उपपात की अपेक्षा रहने का उनका ठिकाना भी। जो पृथ्वी का ही कहे तो पृथ्वियों में हमने उसके निकाला था ना एरिया कैसे होते, प्रत्येक पृथ्वी की डायमेंशन लिए थे और उसको उसकी मोटाई से गुणा किया था, सबकी टोटल की थी। तो ये पृथ्वी कायकों का रहने का ठिकाना कितना है, तो हम कहेंगे लोक का संख्या का भाग। ये देखो, परंतु जब हमने अपर्याप्तों की या सामान्य से बादर पृथ्वी कायकों की मारणांतिक और उपपात की बात की थी तो अपर्याप्त जीवों का प्रमाण बहुत बड़ा है। अपर्याप्त को या टोटल को कितना है, तो असंख्यात लोक है। और मारणांतिक और उपपात में क्या होता है, प्रदेश फैलते हैं जहां तक जन्म लेना है। मारणांतिक में भी फैलते हैं और उपपाद यानी कहीं से मरकर आता है तो भी प्रदेश फैले रहते हैं, उस अपेक्षा अनेक राजुओं का भी वहां उदंड हो जाता है, उस कारण उनकी अवगाहना और बढ़ती है। जीवों की संख्या भी ज्यादा है, स्वस्थान में तो उनको अपने क्षेत्र में रखना है, उसकी उस एरिया को तो बाहर नहीं जा रहे। पर मारणांतिक में और उपपाद में अनेक राजु दूर तक भी मारणांतिक होता है, तो क्षेत्र में भी पूरा लोक लिया। किसमें, बादर पृथ्वी कायिक में और बादर पृथ्वी कायिक अपर्याप्त में। बहुभाग आगे की राशियां बतानी, उसके साथ कंपेयर करना है, क्योंकि कुछ तो उसमें समुद्घात कर रहे हैं, कुछ अलग अलग समुद्घात कर रहे हैं, इसलिए उस अपेक्षा से उसका बहुभाग। टोटल जो इतने अपेक्षा लगाए ना हमने, 10 पद लगाते, जहां जितने पद लगेंगे उसमें से इनका प्रमाण लेना है स्वस्थान से। तो देखो यहाँ क्या कहते, तो यहाँ बादर किसकी बात चल रही, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त। अब उनका रहने का ठिकाना कितना है, तो उनकी जो जो रहने की एरिया उसको ही देखेंगे। तो अभी यहाँ फिर पढ़ते सूत्र का अर्थ इस प्रकार है, स्वस्थान स्वस्थान वेदना समुद्घात और कषाय समुद्घात को प्राप्त हुए बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीव सामान्य लोक आदि चार लोगों के असंख्यात विभाग प्रमाण चुके, यानी तिर्यक लोक का भी वो असंख्यातवा भाग उन्होंने गठित कर दिया। और ढाई तीर से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। अब आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट लाइन, मारणांतिक पेज नंबर 93 पर हम पीछे वाला बता रहे हैं, 93 पेज नीचे का पैराग्राफ। ऊपर की दो लाइन हमने पढ़ ली कि हाँ, अभी हम चौथी लाइन लास्ट में, मारणांतिक समुद्घात और उपपात को प्राप्त हुए बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त जीव, पर्याप्तों की बात है, अपर्याप्तों की तो पूरा लोक में हमने लिया था, अपर्याप्त जीव सामान्य लोक आदि तीन लोगों के असंख्यात विभाग। अब यहाँ रहने का ठिकाना चार लोगों का असंख्यात भाग लिया, अब समुद्घात में मारणांतिक और उपपात में तीन का असंख्यात भाग, परंतु तिर्यक लोक के असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहे, क्योंकि वो मारणांतिक करके वो तो अनेक राज्यों तक फैलते हैं उनके प्रदेश, इस अपेक्षा से असंख्यात गुणा कह दिया। अपर्याप्तों में पूरा लोक कहा था, पर्याप्तों में तिर्यक लोक का असंख्यात गुणा लिया, यही बात। अभी अन्य भी पर्याप्तम की बात ऐसी है इसके, अभी नीचे से पांचवी लाइन, यानी उन्होंने क्या इसी प्रकार क्या लेना है कि अपकायिक, जो बादर अपकायिक है, वनस्पति कायिक है, प्रतिष्ठित वगैरह वगैरह, इतनी विशेषता है कि नीचे से पांचवी लाइन वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात, उसी में नीचे से पांचवी लाइन, और स्वस्थान पदगत बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीव तिर्यक लोक के संख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते। ऊपर क्या लिखा था, चारों लोगों के असंख्यातवे भाग में था, पल्लोपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण, ये जो यहाँ कथन है ना इसको समझना है। अभी पल्लोपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण जगत प्रतरों को प्रतरांगुल से खंडित करके, अभी इसका अर्थ देखते हैं। जो एक लब्ज भाग लगे उतना इन राशियों का प्रमाण, इनकी राशि कितनी है, इनकी राशि कितनी है, ये बात चल रही थी। तो जगत प्रतर को पल्ले के असंख्यातवे भाग से गुणा करो और प्रतरांगुल का भाग दो। एक्चुअली क्या यह संख्या क्या है, जगत प्रतर डिवाइडेड बाय प्रतरांगुल डिवाइडेड बाय पल्ले का असंख्यातवे भाग, डिवीजन की डिवीजन गुणकार में चली जाती है। अभी हम ऐसा ही रखेंगे, ये प्रतरांगुल का जो असंख्यातवा भाग है उससे जगत प्रतर को भाग देंगे तो राशि आती है। यहाँ तक ख्याल में ही बस। तथा अवगाहना घनागुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, ये तो राशि है, और अवगाहना कितनी है, घनागुल डिवाइडेड बाय पल्ले का असंख्यात्व भाग, ये अवगाहना है, ये राशि है। अब उसके आगे का स्टेटमेंट देखो, तो कहते ये अगर घनांगुल का असंख्यात्व भाग नहीं मानेंगे तो इसके बाद द्विंद्रिय जो पर्याप्त की जघन्य अवगाहना हमने देखी थी वो असंख्यात गुणा वो घटित नहीं होगा, ये उनका कहना है। नहीं मानेंगे तो इसलिए यहाँ ये पल्ले का असंख्यात भाग से इसको भाग देना है। यहाँ तक बात ख्याल में। अब कहते हैं इसलिए प्रत्येक शरीर पर्याप्त राशि तिरेक लोक के संख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो कहते कि घनांगुल का भागार प्रतरांगुल के भागार से संख्यात गुना है, ये क्या कहना चाहते हैं अभी देखो। घनांगुल का भागार पल्ले का असंख्यातवा भाग, यहाँ प्रतरांगुल का भागार भी पल्ले का असंख्यातवा भाग। तो कहते हैं कि घनांगुल का भागार प्रतरांगुल के भागार से संख्यात गुना है, ये पल्ले का, इसमें भी पल्ले का असंख्यात भाग है और यहाँ पर भी पल्ले का असंख्यात भाग। तो प्रतरांगुल का जिस पल्ले के असंख्यात भाग से भाग देते हैं उससे घनांगुल को जिस पल्ले के असंख्यात भाग से भाग दे रहे हैं वो संख्यात गुणा है। ये क्योंकि उनकी चर्चा चली आ रही है ना दो तीन पेज से, इसलिए वो यानी 93 पेज पर हमने लास्ट लाइन में ये जगत प्रतर को गुणा करके लिखा है, परंतु उसका एक्चुअल अर्थ क्या होता है, जगत प्रतर डिवाइडेड बाय प्रतरांगुल डिवाइडेड बाय पल्ले का संख्यात होगा, ये हुई राशि, और अवगाहना है घनांगुल डिवाइडेड बाय पल्ले का संख्यात होगा। अब ये वाली जो राशि है घनांगुल के डिवीजन में ये संख्यात गुणा है, इससे संख्या गुना। ये 94 पेज पर बताया। यही रेफरेंस अभी जो हम पढ़ रहे थे, अभी शंका का 98 पेज पर आना, नीचे की शंका जो है, एक ही शंका उस पेज पर, यहां पर बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त की जगन्य उगाना घनांगुल के असंख्यातवे भाग कही है। ये अभी हमने उसको देखा 93 पेज पर देखा था, पेज 93 पर। सो वह भले ही रही आवे, किंतु प्रत्रांगुल के भागहार से घनांगुल का भागहार संख्यात गुणा होता है, यह कैसे जाना जाता है? अभी ये प्रश्न का अर्थ समझ में, ये उन्होंने कहां से निकाला? उसका समाधान, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीव, वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और स्वस्थान पदों की अपेक्षा तिर्यक लोक के संख्यातवे भाग में रहते हैं। इस प्रकार के गुरुपदेश से जाना जाता है कि प्रत्रांगुल के भागहार से घनांगुल का भागहार संख्यात गुणा है, क्योंकि उसको संख्यात गुणा करेंगे, क्योंकि उनकी अवगाहना, हम अवगाहना निकालनी थी, वो बड़ी होगी तो तिर्यक लोक का संख्यात भाग हो जाता है। अन्य कायिकों में हमने देखा था बादर पर्याप्त जीवों की, चार लोगों के असंख्यातवे भाग में बताया था। ख्याल में आई नुवर कहा? देखो फिर से मैं आपको दूसरी एंगल से बताना चाहती हूँ। अभी अपनी बात किसकी चल रही थी? बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, आपके जो अवगाहना के नंबरिंग है उसमें देखो उसका नंबर कहाँ है, 50 नंबर देखो। अभी अभी हम जो बादर पृथ्वी का एक आदि की देख रहे थे, 41 नंबर पर था। देखो बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, वो निवृत्ति छोड़ दो, पर्याप्त जीव की जगन्य उगाना, और बादर बाद में उन्होंने निगोद की वगैरह ली बीच में, उसको छोड़ भी देते हैं, और वनस्पति का एक में वो तो आगे आगे असंख्यात गुणे होती गई ना, समझ में आती है बात? उनसे वो असंख्यात गुणे होते होते बाद में वो द्विंदी आदि की बात है। इसलिए अन्य कायिकों में तिर्यक लोक का असंख्यात अभाग कहा और इनको असंख्यात गुणा कहा, क्योंकि तिर्यक लोक कितना है? जगत प्रतर मल्टीप्लाइड बाय लाख का सातवां भाग, लाख योजन का सातवां भाग, और इनकी संख्या जगत प्रतर डिवाइडेड बाय प्रत्रांगुल वगैरह कुछ कुछ है, और फिर उससे अवगाहना से गुणा करना, ये सारा हिसाब बता रहे हैं और कुछ नहीं। हमें इतना ही देखना है, वो असंख्यात विभाग है, संख्यात विभाग है। आगे बढ़े, देखो तथा उक्त पेज नंबर 98 लास्ट टू लाइन, उक्त इसी गुरुपदेश से बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर की अवगाहना में जीवों की अधिकता भी जानना चाहिए, यानी उनकी संख्या भी अधिक है इसलिए वो घटित हो जाता है। अब यहाँ आते हैं 99 पेज पर, वो अभी हमने पढ़ा था, फिर दोबारा पढ़ लेते। सूत्र में बादर निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त जीव क्यों नहीं कहने, उसको अलग से क्यों नहीं कहा? अवगाहना में तो अलग से बताए थे, सूत्र में क्यों नहीं कहते? तो कहते उसको उसी में गर्भित किया नहीं, क्योंकि बादर निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त जीवों का प्रत्येक शरीर पर्याप्त वनस्पति का एक जीवों में अंतर्भाव हो जाता है। जब प्रत्येक शरीर पर्याप्त कहते तो उसके दो भेद हैं, निगोद प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। अब तेजस काय की बात, स्वस्थान स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और वैक्रिक समुद्घात गत। देखो इसमें वैक्रिक लिया अग्निकायिक में, पृथ्वी कायिक में, जल कायिक में नहीं लिया था, वनस्पति कायिक में नहीं लिया था, अग्नि और वायु कायिक वो भी पर्याप्त है, बादर पर्याप्त, ये अग्नि कायिक के भी पढ़ रहे हैं। हाँ, अग्नि कायिक पर्याप्त में लेना, ये विक्रिया भी उनकी होती है। देखो, इसलिए स्वस्थान स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात और वैकृत समुद्घात, गत बादर तेजस का एक पर्याप्त जीव पांचों लोगों के असंख्यात विभाग में, ये इसलिए वो अलग से बताया श्लास में। यानी अन्य कायिक तो जो पहले तीन कायिक वाले लिए थे, ये तो दो कायिक वाले लिए थे हमने, पृथ्वी कायिक और अप कायिक, तिर्यक लोग का असंख्यात, चार लोगों के असंख्यात विभाग में कहा था। अग्नि कायिकों की इतनी संख्या कम है, मनुष्य लोक के भी असंख्यात विभाग में लिया, विक्रिया करके भी। मारणांतिक समुद्घात और उपपात गति वे ही बादर तेजस का एक जीव चारों लोगों के असंख्यात विभाग और मनुष्य लोक से असंख्यात गुने क्षेत्र में रहते हैं। पृथ्वी का एक को तो हमने तिर्यक लोक की संख्यात गुना भी कह दिया था वहां पर, यहाँ तो सबका असंख्यात अभाव लिया, क्योंकि अन्य की संख्या बहुत ज्यादा है इनसे, उनकी उनमें से कम है सबसे। अब नेक्स्ट सूत्र पढ़ते हैं। बादर वाऊ काय पज्जत्ता केवड़ी खेते लोगस्त संख्य भागे, इनकी अलग से हमेशा वायु कायिकों की बात लिखते हैं, क्योंकि वो लोक का संख्यात्वा भाग में रहते हैं, क्योंकि पांच गणराज्यों तक तो वो पाए जाते हैं, और फिर बाकी वात वाले उनकी एरिया भी हमने कैलकुलेट की थी, वो सब लेते हुए लोक का संख्यात्वा भाग हो जाता है। बादर वायु का एक पर्याप्त जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, लोक के संख्यात्वे भाग में रहते हैं, इस सूत्र का अर्थ कहते हैं। स्वस्थान वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पदगत बादर वायु का एक पर्याप्त जीव सामान्य लोग आदि तीन लोगों के संख्यात्वे भाग में, और तिर्यक लोक तथा मनुष्य लोक इन दो लोगों से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। देखो, मारणांतिक भी करेंगे तो संख्यात्वा भाग लिया उसमें, इनमें मारणांतिक में देखो पहले हमने जो देखा था ना अवगाहना के टेबल से पूर्व में 23 के वहां देखो पेज नंबर 93 पर फिर से देखो, नीचे के पैराग्राफ की चौथी लाइन ऊपर से, वहां बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त अप का एक पर्याप्त वगैरह की बात चल रही थी। मारणांतिक और उपपाद में सामान्य लोग तीन लोगों के असंख्यात विभाग क्षेत्र में लिखा, ख्याल में आई बात, और मनुष्य तीरी लोग के असंख्यात गुना क्षेत्र लिया। अब यहां देखो कंपेयर करो बादर वायु कायिक के, उनका रहने का भी और मारणांतिक भी और उपपाद भी तीन लोगों के संख्यात विभाग में लिया, और तिर्यक लोक मनुष्य लोक इन दो लोगों से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहे। हमें केवल उसका कंपैरिजन करना है और कुछ नहीं। मनुष्य तिर्यक लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में, तो उसमें भी बताया था। इतनी विशेषता इनको मारणांतिक को स्वस्थान के साथ उसको भी ले लिया। आगे बढ़े, शंका। बादर वायु का एक पर्याप्त राशि लोक के संख्यात्वे भाग प्रमाण है, क्षेत्र है उसका, जब वह मारणांतिक समुद्घात उपपाद पदों को प्राप्त हो तब वह सर्वलोक में क्यों नहीं रहती है। हमने अपर्याप्त जीव मरकर कहीं पर भी जाते हैं, तो पर्याप्त जीव भी मरकर कहीं पर जाते हैं, तो इसमें सर्वलोक क्यों नहीं लिए, ये प्रश्न है। समाधान, नहीं रहती है क्योंकि राजू प्रतर प्रमाण मुख से और पांच राजू आयाम से स्थित क्षेत्र में ही प्राय करके उन बादर वायु का एक पर्याप्त जीवन की उत्पत्ति होगी। ओहो, क्योंकि मुख्य क्षेत्र कौन सा है, वो पांच राज्यों वाला, तो वहां पर ही जीवों की उत्पत्ति होगी।
तो हो सकता है ना,
कहीं पर भी जा सकते हैं। हाँ, यानी मेजॉरिटी यहाँ पर होगी। अब इसीलिए प्रश्न पूछते फिर, अन्य क्षेत्रांतर को जाकर उत्पन्न होने वाले बादर वायु का एक पर्याप्त जीव अत्यंत थोड़े है, यह कैसे जाना जाता है? यानी वो पांच राज्यों अन्यत्र भी वायु का एक है ना, तो वहां पर भी जाएंगे ना, उपपात तो वहां पर भी होगा, तो उसको क्यों नहीं लिया? समाधान, बादर वायु का एक पर्याप्त जीव लोक के संख्यातवे भाग में रहते हैं, इस सूत्र से जाना जाता है कि राजू प्रतर प्रमाण मुख वाले, देखो इसका अर्थ समझते हैं, राजू प्रतर मुख वाला हमने देखा है, लोकाकाश जो है ना, अभी यहां से पांच राजू हाइट तक ये वायु का एक है, तो कहते ये राजू प्रमाण मुख, यानी वो राजू प्रमाण स्क्वायर है यहाँ पर, और ऐसे पांच राजू उसकी हाइट है, इसको कहते हैं राजू प्रमाण मुख वाला। राजू प्रतर प्रमाण, प्रतर क्यों, राजू बाय राजू चौकोन है ना, त्रिसनाली चौकोर है, तो ऐसा राजू है, ऐसा भी एक राजू, पूर्व पश्चिम भी एक राजू, दक्षिणोत्तर भी एक राजू, और हाइट उसकी पांच राजू, तो राजू प्रतर प्रमाण मुख वाले और पांच राजू आयाम वाले क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में जाकर उत्पन्न होने वाले बादर वायु का एक पर्याप्त जीव बहुत कम होते हैं। यदि ऐसा न माना जावे तो इस सूत्र का पृथक आरंभ निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि फिर तो उनका बादर वायु का एक अपर्याप्तों में अंतर्भाव हो जाएगा। यानी अन्यत्र उत्पन्न होने वाले बहुत कम है, ये इससे पता चलता है कि सब मेजॉरिटी यहीं पर उत्पन्न होने वाले।
तो साइड में नहीं लेने का, इसमें
बहुत अल्प जीव है उसमें, क्योंकि ये तो पांच, यानी तो घनलोक का संख्या का भाग है यहाँ, और बाकी हमने कैलकुलेट किया था वो असंख्या का भाग है, और उत्पन्न होने की अपेक्षा भी वहाँ बहुत कम जीव उत्पन्न होते, ये लेना है इसमें। अब 25 नंबर, वनस्पति काय निगोद जीवा बादरा रह गया, हाँ ये समाधान के बाद वाले दो लाइन, हाँ वो रह गया मेरे, हाँ वैक्रिक समुद्घात गत, क्योंकि बादर वायु का एक विक्रिया भी करते, ऊपर उनको छोड़ा था, मारनातिक उपपाद को लिया था, वैक्रिक समुद्घात गत बादर वायु का एक पर्याप्त जीव सामान्य लोक आदि चार लोगों के असंख्यातवे भाग में रहते, क्योंकि विक्रिया करने वाले थोड़े हो गए, इसलिए वो असंख्यात भाग लिया, चारों लोगों का असंख्यात भाग लिया, क्योंकि रहते तो संख्यात भाग में, और फिर भी असंख्यात भाग यहाँ ले लिया। अढ़ाई द्वीप से अधिक क्षेत्र में रहते या कम में यह जाना नहीं जाता, यानी होगा कि विक्रिया करने वाले यहीं पर हो गए शायद, या कहीं ये पता नहीं है तो कह नहीं सकते। अब नेक्स्ट सूत्र, वनस्पति कायकों को छोड़ा था, बाकी की चर्चा हुई, केवल उसमें वो प्रत्येक शरीर वाले लिए थे, अब अन्य यहां लेंगे। वनस्पति काय निगोद जीवा बादरा सुहुमा पज्जत्ता अपज्जत्ता केवड़ी खेते सव लोगे। वनस्पति का एक जीव, जब वनस्पति का एक जीव पूरे लोक में रहते हैं ऐसा कहेंगे, आपको मालूम है वनस्पति का एक पूरे लोक में रहते हैं कैसे, पूरे सब झाड़वाड़ होते हैं क्या सब जगह कैसा, ये हमारे रूम में किधर है, देखो निगोद भी वनस्पति का एक है और सूक्ष्म निगोद पूरे लोक में रहते हैं, उसके कुछ आधार बाधार की जरूरत नहीं रहती, इसलिए अकेला वनस्पति का एक कहाँ रहते तो पूरे लोक में रहते, उसमें से निगोद कहाँ रहते तो पूरे लोक में, और सूक्ष्म निगोद के पर्याप्त भी अपर्याप्त भी कहाँ रहते पूरे लोक में, इसलिए सूत्र अलग बताए। नहीं वनस्पति इन जनरल कहा तो उसमें सब आ गए, जैसे हम कहते कर्म की स्थिति कितनी 70 कोड़ा को वो तो अभी देखा ना लोग तीर्यक लोग का संख्या तो अभाग प्रत्येक प्रत्येक वनस्पति उसके आधार से निगोद रहे वो अलग। तो वनस्पति का एक कहने से भले किसी निगोद की अपेक्षा है, वो है वनस्पति का एक, तो वनस्पति का एक जीव पूरे लोक में रहते। अब वनस्पति का एक नहीं लिखते हम, उसका भेद लिखेंगे कि निगोद जीव कहाँ रहते तो पूरे लोक में रहते हैं। फिर वनस्पति ऊपर का पढ़ा था नहीं, हाँ पढ़ा था ना वनस्पति का ये निगोद जीव आप आधारसो में हो गया। अभी हम हिंदी पढ़ रहे थे वनस्पति का एक जीव निगोद जीव, अब केवल ऐसा कहेंगे वनस्पति का एक बादर जीव, बादर तो किसी के आधार से रहेंगे तो वो पूरा लोक में कहाँ रहेंगे, पर उनकी संख्या अनंत है ना, अनंत है तो अनंत को उसके अवगाहना से मिनिमम भी अवगाहना से उसको गुणा, बादर है तो बादर निगोद की अवगाहना के टेबल में 11वां नंबर है ना, कितना नंबर है 11वां का 10वां है, 10वां होगा शायद 10 नंबर पर होगी बादर निगोद जीवों की जगह में अवगाहना 10 नंबर होगा 11वें में तो हाँ 10वां ही होना चाहिए क्योंकि 11वें नंबर पर प्रतिष्ठित प्रत्येक को लिया था।
तो
मैंने हाँ पूरा लोग क्यों कहें, इतनी अवगाहना को आनंद से गुणा करो तो वर्तमान का क्षेत्र घटित होगा कि नहीं होगा, इसलिए यहाँ वनस्पति का एक बादर जीव लिया, वनस्पति का एक सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म में तो मात्र निगोदी होते हैं, बादर वनस्पति कहने से वो प्रत्येक भी आ गए परंतु वहां पर मेजोरिटी तो निगोद की है। वनस्पति का एक बादर पर्याप्त जीव, वनस्पति का एक बादर अपर्याप्त जीव, एक एक इसका भेद लेंगे तो भी पूरा लोक में ये कथन घटित हो रहा है। कौन से ना प्रत्येक उसमें इंक्लूड करो कुछ बात नहीं, हमको निगोद की अपेक्षा अनंतता आती है, मेजॉरिटी तो निगोद की है, निगोद की अपेक्षा पूरा लोक घटित होता है, परंतु उसका हम क्राइटेरिया कौन सा बता रहे हैं, वनस्पति का एक बादर पर्याप्त, बादर पर्याप्त कहने से प्रत्येक भी आ गया और निगोद भी आया, निगोदों की संख्या से ये सब पूरा लोक घटित होगा, प्रतिष्ठित या अप्रतिष्ठित प्रत्येक से नहीं रहने का ठिकाना, मगर रहने के ठिकाने के साथ उनके अवगाहना से गुणा करना पड़ता है वो भी है ना, उनकी संख्या इतनी ज्यादा है। देखो वनस्पति का एक बादर पर्याप्त, वनस्पति का एक बादर अपर्याप्त जी, बादर अपर्याप्त कहने से प्रत्येक के भी अपर्याप्त है साधारण के भी अपर्याप्त, हम उसके अलग अलग पद्धति से भेद बता रहे परंतु उन सभी में निगोद इंक्लूडेड है तभी तो पूरा लोक घटित हो रहा है। वनस्पति का एक सूक्ष्म पर्याप्त जीव, सूक्ष्म में तो मात्र निगोद ही होते हैं, वो प्रत्येक वाले जो होते हैं वो सूक्ष्म नहीं होते। वनस्पति का एक सूक्ष्म अपर्याप्त जीव, अब निगोद में बादर पर्याप्त जीव, निगोद बादर पर्याप्त जीव, पहले वनस्पति का एक बादर पर्याप्त लिया, अकेला निगोद बादर पर्याप्त लेते तो भी अनंत तो है ही, निगोद बादर अपर्याप्त जी।
यहाँ पर एक बात निश्चित करनी है कि सारे वनस्पति का एक निगोद नहीं होते हैं, लेकिन सारे निगोद वनस्पति का एक होते हैं, इसलिए यहाँ वनस्पति का एक जीवों के चार भेद बताए और अभी निगोद के चार भेद बताएंगे।
बराबर, पहले अकेला वनस्पति का एक बताया, फिर उसमें अकेला निगोद लिए, फिर वनस्पति गायकों के बादर, फिर सूक्ष्म, बादर पर्याप्त, बादर अपर्याप्त, ऐसे भेद किए। अब वनस्पति का एक सूक्ष्म में सूक्ष्म पर्याप्त, फिर वनस्पति का एक सूक्ष्म अपर्याप्त, अब निगोद लेना केवल, निगोद बादर पर्याप्त, निगोद बादर अपर्याप्त जीव, निगोद सूक्ष्म पर्याप्त जीव और निगोद सूक्ष्म पर्याप्त जीव, इतने भेद किए सब में तो निगोद इंक्लूड है ही, ये ख्याल में आई ना बात। कितने क्षेत्र में रहते तो सर्वलोक में रहते। स्वस्थान वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपादगत वनस्पति का एक और सूक्ष्म वनस्पति का एक जीव तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीव सर्वलोक में रहते हैं। इसी प्रकार निगोद जीव और सूक्ष्म निगोद जीव तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। स्वस्थान और वेदना समुद्घात बादर वनस्पति का एक और बादर निगोद जीव तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीव सामान्य लोग आदि तीन लोगों के असंख्यातवे भाग में। अब ये आपके प्रश्न का उत्तर आया। स्वस्थान वेदना वाले, स्वस्थान वाले और वेदना वाले, बादर वनस्पति का एक लिया और बादर निगोद जीव लिया, उनके पर्याप्त पर्याप्त, क्योंकि बादर है तो किसी के आधार से रहते हैं। अब इसके इसलिए यहाँ उनके क्षेत्र की अपेक्षा बात कर, अब यहाँ अनंत और उसको अवगाहना से नहीं गुणा किया यहाँ पर। तो कितने, तो तिर्यक लोक से संख्यात गुणे और मानुष्य क्षेत्र से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। मारणांतिक समुद्घात और उपपादगत ये सब बादर जीव सर्वलोक में रहते हैं। यहाँ तो उनके अनंत की बात आ गई। उक्त बादर जीव पृथ्वियों का ही आश्रय लेकर रहते हैं, इसलिए वे लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। ये समझ में आई बात? शंका, यह कैसे जाना जाता है? गुरु के उपदेश से जाना जाता है कि बादर वनस्पति का एक जीव पृथ्वियों के ही आश्रय से रहते हैं।
यहाँ पर ये जो बात बताई है कि बादर वनस्पति का एक जीव पृथ्वियों के आश्रय से रहते हैं, वैसे बादर वायु का एक जीवों के बारे में क्या कहना है?
उनके आधार से पृथ्वी रहती है। एक दूसरे के आधार से रहते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। काय मार्गणा में हमने वो पृथ्वी का एक, अप का एक, फिर तेजस का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, सबकी बात देखी। अब त्रस का एक की काय मार्गणा में इनकी बात चल रही है। तसकाय, तसकाय पज्जत्त येसु मिच्छा इट्ठी पहुरी। अब जो त्रसकायिकों में गुणस्थान कितने हो गए? पांच। आप क्या कहते? 1 से 14। अरियंत भगवान त्रस है कि नहीं? है ना। त्रस नाम कर्म का उदय तो 14 गुण स्थान तक है। तो अभी क्योंकि हमको कोई भी मार्गणा है उसमें गुण स्थान बताने हैं, तो त्रस कायिकों में,
त्रस यानी हिलते डुलते वो
त्रसकाय, त्रसकाय पज्जत येसु मिच्छा इट्ठी पहुरी। मिच्छा दृष्टि से लेकर जाव अजोगी केवली ती केवड़ी खेतते लोगस्य असंख्य यदि भागे। त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त जीवों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर अयोगी केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? वे लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं। अब उसको समझाएंगे। अब यहाँ संयोग केवली को छोड़ना है, वो समुद्घात करते तो पूरे लोक में हो जाते हैं। स्वस्थान, स्वस्थान विहारवत, स्वस्थान अन्य कायिकों में विहारवत को लिया नहीं था, त्रसों में विहार होता है। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैक्रिक समुद्घात गत त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि भी लगाए ना, इसलिए वहां यह तेजस आहारक की बात यहाँ नहीं होगी और मारणांति की बात तो अलग से करेंगे। सामान्य लोक आदि तीन लोकों के असंख्यातवे भाग में, तिर्यक लोक के संख्यातवे भाग में, और ढाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। त्रस कहने से द्विंद्रियादि सारी आई है और सभी अभी अन्य तीन गतियों के भी आ गए करें, केवल एक इंद्रिय को छोड़ दो बाकी सब आ गया। फिर भी तिरेक लोक का संख्यात भाग कह दिया है ना, क्योंकि जगत प्रतर गुणा लाख का सातवा भाग करना है। लाख का सातवा भाग वो योजने में लेना है, जगत प्रतर मल्टीप्लाइड बाय वो, ये तिरेक लोक होता है, समझ गए?
तिरेक लोक से संख्यात की बात क्यों कहा? तिरेक लोक से संख्यात की बात में गए थे, ऐसा क्यों कहा?
उनकी संख्या जो है जगत प्रतर का कुछ भाग है ना, इसलिए उसको संख्या तो भाग कह दिया तिरेक लोक का।
जो बीच के समुद्र है उसमें त्रस्ताई नहीं
है, नहीं
है ना, नहीं, मगर देव नार की सब सब लेके ये लेना है। हाँ, द्वीपों में है, समुद्रों में नहीं है। द्वीपों में कौन है? वो सारे तीरियंचों की जगह ने भोग भूमि है, पंचेंद्रिय है वहाँ पर तीरियंच। अब आगे देखो, अभी मारणांतिक समुद्रात और उपपादगत त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त मिथ्या दृष्टि जी तीनों लोगों के असंख्यात भाग में, क्योंकि एट ए टाइम मारणांतिक करने वाले भी है, वो स्पर्शन में तो अलग बात आती है, यहाँ तो असंख्यात भाग। तथा मनुष्य लोक और तिरेक लोक से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। हाँ बोलो।
लोक को आपने क्या बताया?
देखो तिरेक लोक को कैसे, हाँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूर्व पश्चिम एक राजो, सुनो सुनो, पूर्व पश्चिम है एक राजो, दक्षिण उत्तर है सात राजो, तो एक गुणा सात सात प्रतर राजो होते हैं, और उसकी हाइट कितनी है? तो एक लाख योजन है। तो हम क्या करेंगे, वो एक राजु गुणा सात राजु के बदले सात गुणा सात करेंगे, तो गुणकार सात का बढ़ा दिया तो भागहार में भी सात रखेंगे, तो भागहार का भाग हम वो लाख को देंगे। तो यहाँ सात राजु गुणा सात राजु एक जगत प्रतर हुआ, और लाख योजन का सातवा भाग करेंगे, तो जगत प्रतर गुणा लाख का सातवा भाग, ये योजन में है और ये जगत प्रतर में, यानी लाख के सातवें भाग प्रमाण योजनाओं के जितने प्रदेश है उतने मल्टीप्लाइड बाय जगत प्रतर, ये उसका अर्थ होता है, ये तिरेक लोक की एरिया है। अब बाकी जो संख्या होगी वो तो स्वस्थान वगैरह सब की अपेक्षा उसका संख्या तो अभाग हो जाता है, ये कहना चाहते हैं। समझ में आई बात? क्योंकि हमें केवल वो संख्या नहीं याद करनी, वो कैसे निकाली वो याद है तो ख्याल में आता है कि लाख का सातवा भाग क्यों किया हमने, क्योंकि एक राजू के बदले हमने सात माया सात से गुणा किया तो सात से भाग देंगे। हाँ हाँ, यहाँ पर अपवर्तना जानकर करके चाहे। अभी मिथ्या दृष्टि की बात हो गई, सासाधनादि शेष गुणस्थान वर्ती त्रसकायिक और त्रसकायिक पर्याप्त जीवों का क्षेत्र पंचेंद्रिय जीवों के क्षेत्रों के समान जानना चाहिए। वही जो जहाँ लोक का असंख्यात भाग वगैरह जो बात होती है वहाँ वैसा ही होगा। ये हमने जो देखा था ना पहले पंचेंद्रियों की भी बात देखी थी, जिन जिन मार्गणाओं का समान कथन होगा तो उसके समान ऐसा कह देते। अब सहयोगी के हमेशा अलग से सूत्र बताते हैं, यहाँ पर भी बताएं। सजोगी केवली ओघम, सहयोगी केवली का क्षेत्र ओघ निरूपित सहयोगी केवली के क्षेत्र के समान है। ओघ निरूपित करते क्या, जो पहले हमने गुणस्थानों में पूरा क्षेत्र घटित किया, अब वो गुणस्थान की अपेक्षा सहयोगी केवली कहो या काय मार्गणा में त्रसकायिकों में सहयोगी केवली कहो, बात एक ही है, तो वही कथन यहाँ लागू हो सकता है, होता है, यह सूत्र सुगम है। अब हमने त्रस और त्रस पर्याप्त देखे, अभी त्रस अपर्याप्तों को भी देखना है, उसका सूत्र अलग बत्ते है। त्रसकायिक अपज्जत्ता पंचेंद्रिय अपज्जत्तानं भंगो, त्रसकायिक लब्धि अपर्याप्त जीवों का क्षेत्र पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तकों के क्षेत्र के समान है। जो हम देखते हैं ना वो कर्म भूमि वाले उसमें वो होंगे, क्योंकि वो पंचेंद्रियों की अपर्याप्तों की हमने देखी थी, पंचेंद्रिय अपर्याप्तों की ये लोक का संख्यात भाग वो यहाँ पर भी घटित होगा। यह सूत्र भी सुगम है क्योंकि इसका पहले प्ररूपण किया जा चुका है। इस प्रकार काय मार्गणा समाप्त हुई। अभी तक हमने क्या क्या कौन सी मार्गणा देखी याद है? गति मार्गणा, फिर इंद्रिय मार्गणा, काय, और तीन हो गए। अभी योग मार्गणा, योग मार्गणा के भेद बताएंगे आप? हाँ बोलो, अभी आप आए थे ना शिविर में। हाँ बोलो बोलो। सात कार्य यानी मनोयोग, वचन योग, कायुग, इतना भी हम कहेंगे तो उसके ये भेद हो जाएगा। यानी कोई तीन योग वाले, कोई दो योग वाले, कोई एक योग वाले। अभी एक एक योग की अलग बात बताएंगे यहाँ पर। तो मेरा ये प्रश्न है, सबसे कौन से योग वाले जीव ज्यादा है? मनोयोग वाले। संख्या अनंत किसकी है? एक इंद्रियों की, काय की नहीं, एक इंद्रियों की। एक इंद्रियों में काय योगी होता है केवल, उनके मन और वचन नहीं होते। मन किसको होता है? संगी पंचेंद्रियों के होता है। और वचन किसके होता है? वचन योग द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय के, और वो भी पर्याप्तों के होता है। तो काय योग जब हम कहेंगे तो अनंत संख्या तो काय योग वालों की होगी, और वही औदारिक और औदारिक मिश्र वालों की होगी अनंत संख्या। ख्याल में आती है ना? मनोयोगी वचन योगी कितने होंगे? तो जो वचन योगी के लिए सभी त्रस लेंगे और मनोयोगी के लिए संगी पंचेंद्रिय लेंगे। इतना विचार तो अभी हमने पहले किया, अभी आगे पढ़ेंगे। देखिए
अभी यहाँ पे आपने मनोयोग की चार,
ब्रह्मा ने मनोयोग के चार भेद बताए, वचन योग के चार भेद बताए, लेकिन यहाँ तो पांच लिखे है।
पांच लिखे
हाँ।
क्यों सामान्य? जिसमें सारे भेद गर्भित है ऐसा सामान्य अलग से बताएंगे, फिर उसके एक एक विशेष को अलग से बताएंगे। ये कथन पद्धति हमको समझनी है, करना नहीं होती और कुछ नहीं है। नहीं तो यहाँ चार ही लिखे, यहाँ पांच लिखे, कुछ तो गड़बड़ लगती है ऐसा लग रहा है।
देखो यहाँ जो सामान्य लिखा है यानी पांचवा भाग, वो बड़े बड़े अच्छे पढ़ने वाले भी नहीं समझते। अरे चार तो हमने पढ़े थे, ये पांच कहाँ से निकाले? गलती से छपा है क्या? ऐसा प्रश्न आता है अपने यहाँ। तो अभी इसलिए मैंने जानबूझकर बताया कि पांचवा भेद क्या होता है वो आप एक्सप्लेन करें। आपने गलत नहीं बताया, सही बताया। हाँ
अभी सूत्र पढ़ेंगे 29 नंबर का। जोगाणु आदेना पंच मन जोगी पंच वची जोगी सु मिच्छा दिट्ठी पहुड़ी जाव सजोगी केवली केवड़ी खेते लोगस्व असंख्य यदि भागे। अब यहाँ मिथ्या दृष्टि से लेकर कहाँ तक लिए? वचन योगी और मनोयोगियों में सहयोग है, अयोगी को क्यों छोड़ा? योग नहीं है ना, बराबर है। और मनोयोग वो केवली को भी बताया, वो भले उपचार से हो परंतु उसमें भी कहेंगे। तो देखो योग मार्गणा के अनुवाद से पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगियों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर सहयोगी केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात वे भाग में रहते हैं, यानी भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं। स्वस्थान स्वस्थान, अभी कौन से ये पांचों ही मनोयोग और पांचों ही वचन योग केवली के नहीं होंगे, वो तो विशेषता बाद में बताएंगे। तो कहते स्वस्थान स्वस्थान विहारवत स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और वैक्रियक समुद्घात गत। पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगी मिथ्या दृष्टि जीव सामान्य लोक आदि तीन लोगों के असंख्यात वे भाग में, क्योंकि संगी पंचेंद्रीय जीव होंगे, तिर्यक लोक के संख्यात्वे भाग में, संख्यात्वे भाग में वो केवल वो एक छोटी एरिया में रहते, ऐसा नहीं लेना। तिर्यक लोक का क्षेत्र हमें मालूम है और इन लोगों की जो उनका अपना अपना क्षेत्र मालूम है, उस अपेक्षा से लेना। और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। देखो अभी मेरा एक प्रश्न है, पांच मनोयोग और पांच वचन योग में ये जो अभी हमने क्षेत्र की अपेक्षा 10 पद देखे थे, कौन से? स्वस्थान, विहार व स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैखरी, तेजस, आहार, केवली, समुदात, उपपाद और कौन कौन सा रह गया? मारणातिक। हाँ, इसमें से कौन कौन से हो गए, कौन कौन से नहीं हो गए? मनोयोगी, वचन योगी। हाँ, अच्छा, मिथ्या दृष्टि में बता कौन से हो गए, कौन से नहीं हो गए? हाँ, मिथ्या दृष्टि में, हाँ, तेजस, आहार और केवली में, हाँ, बाकी सब हो गए। उपपाद नहीं होगा, मुख्य तो ही इसकी बात है, मैंने तो इन जनरल बात पूछी थी, क्योंकि वचन योग और मनोयोग कब शुरू होगा? उसकी पर्याप्ति पूरी होने पर होगा। उपपाद यानी वो जन्म कहीं से मरकर आया है, पहला समय लेना है, वहां तो ना मनोयोग है ना वचन योग है, ख्याल में है ना? और उपपाद का दंड घटित करना है तो कारमान का योग होगा, वहां पर कैसे सोचना है उसकी एक थोड़ी मैं आपको ट्रिक बताऊं। यहाँ तो मिथ्या दृष्टि में तो तेजस, आहारक और केवली वो भी नहीं होगा, इसमें क्या क्या लिए देखो, स्वस्थान, विहारवत, वेदना, कषाय, वैखरी के लिए, वो सामान्य लोक आदि तीन लोगों के असंख्यात विभाग में, तीर्यक लोक के संख्यात विभाग में और ढाई द्वीप से असंख्यात गुना क्षेत्र में रहते हैं। अब शंकाकार पूछते हैं, वैकृत समुद्घात को प्राप्त जीवों के मनोयोग और वचन योग कैसे संभव है? समाधान, नहीं, क्योंकि निष्पन्न हुआ है विक्रियात्मक उत्तर शरीर जिनके, ऐसे जीवों के मनोयोग और वचन योगों का परिवर्तन संभव है। शरीर जो नया बनाया है उसमें भी मनोयोग, वचन योग, कायोग, इनमें भी उनका परिवर्तन होता रहता है। नया नया उसको उत्तर शरीर, एक मूल शरीर और एक उत्तर शरीर,
सब शरीर में मनोयोग होगा, सब शरीर में वचन योग होगा,
सबका मिलकर ही एक है ना मनोयोग वचन योग। हाँ, यानी वो जीव तो एक ही है ना, उसके मनोयोग वचन योग कायोग में परिवर्तन होता है, ऐसा लेना।
नहीं नहीं, मेरा ऐसा प्रश्न है कि एक देव है वो लाख सैनिक बनता है उसका, तो लाख सैनिकों का सबका मनो एक ही टाइम एट अ टाइम रहेगा?
वो जीव एक ले लो आप, लाख अलग अलग मत सोचो। वही तो जीव एक अखंड रहना हुआ ना, उसका परिवर्तन होता रहता है। जैसे हम यही बैठे बैठे मनोयोग, वचन योग, काय योग, योगों का परिवर्तन होता है, प्रवृत्ति अलग अलग चलती रहती है, वैसे उनका भी प्रवर्तन तो होता ही रहता है ना, तीनों योगों का प्रवर्तन होता रहता है। उन्हें विक्रिया करके देखो जरा कैसे क्या होता है, फिर हमको बताओ। मारणांतिक समुद्घातगत, अब मारणांतिक में ले, देखो उपपाद तो नहीं ले सकते, मारणांतिक तो कर सकते कि नहीं मरण के पहले? अरे जब तक मरण नहीं हुआ तो मन वचन का तो कार्य चल रहा है, दोनों योग चल रहे हैं, हो सकता है ना मनोयोग के काल में मरण भी हो जाए, ऐसा भी होता है, तो उसके मारणांतिक काल में भी ये होगा। तो मारणांतिक समुद्घातगत पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगी मिथ्या दृष्टि जीव सामान्य लोक आदि तीन लोगों के असंख्यात विभाग में, क्योंकि एट अ टाइम करने वाले जीव भी थोड़े हो गए, मानुष लोक और तिर्यक लोक से असंख्यात गुने क्षेत्र में रहते हैं। शंका, मारणांतिक समुद्घात को प्राप्त असंख्यात योजन आयाम से स्थित और मूर्छित हुए संगी जीवों के मनोयोग और वचन योग कैसे संभव है? यही उनका प्रश्न है ना, इतने असंख्यात योजन फैले हुए हैं उनके आत्म प्रदेश, और कोई मूर्छित भी जीव है तो उनको मनोयोग वचन योग कैसे होगा? कोमा में गया है ऐसा कहते। समाधान, हाँ, कोमा में है। है ना, मरणांतिक करने में क्या है, वो तो बहुत अंश कर रहे हैं, असंख्यात मरने वाले असंख्यात बहुभाग मरणांतिक करते हैं। अभी कोमा से करो या कैसे भी करो, क्योंकि हमने वेदना के साथ भी करते ऐसा देखा था ना। किसमें बताए? हाँ, आपका ये प्रश्न है कि अनेक शरीर बने लाख, जैसे इन्होंने पूछा था, कहीं बोल रहा है कहीं क्या कर रहा है, तो हम भी ऐसा लगता है ना हम जो पांचों इंद्रियों के द्वारा एट ए टाइम कर रहे हैं, हम देख भी रहे सुन भी रहे, तो उनका भी उपयोग ऐसा पलटता है। औदारिक शरीर की विक्रिया उसमें भी होती है, तो उपयोग तो पलटना है, पलटता रहना है, क्रिया चलती है, अभी उसके उतने फास्ट फास्ट होता भी होगा ये अपन ख्याल इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछा, उसका समाधान नहीं, क्योंकि बाधक कारण के अभाव होने से निर्भर यानी भरपूर सोते हुए जीवों के समान अव्यक्त मनोयोग और वचन योग मानांतिक समुद्घातगत मूर्छित अवस्था में भी ही नहीं संभव है। ही के बदले भी करो, भी चाहिए। इसमें कोई विरोध नहीं है।
तो मानना तो समझो ख्याल में नहीं आता है, जैसे चलता है इसके ख्याल में नहीं आता
है। ऐसे भी क्या कितना ख्याल में आता है क्या पता, केवल प्रदेश वहां तक फैले
हैं। ये जो करते हैं
मारणांति की बात, विक्रिया की बात अलग है, मारणांति की अलग है। वो वहां तो क्या, वहां तो बाहर भी थोड़े जाने, जहां जिस पुद्गल स्कंध में उत्पन्न होना है वहां तक आत्म प्रदेश फैले है, बस इतना ही है। वो वहां का वातावरण देखता है खुश खुश और वहां कहां बात है, हाँ हंसता हुआ मरता है उसमें क्या जानना हो रहा है, क्योंकि वो तो कर्म है बंधा हुआ और वहां तक आत्म प्रदेश फैले है बस। वहां तो कुछ उत्तर शरीर वगैरह तो बना है नहीं, वहां कोई इंद्रियों की प्रवृत्ति वहां नहीं हो रही, केवल आत्म प्रदेश कारण तेज शरीर फैले हुए है। विक्रिया में आहारक में दूसरा शरीर बना के गया है वहां पर, मारणांतिक में मेजोरिटी मारणांतिक करते हैं, ये आया है। असंख्यात बहुभाग जितने मरते हैं उसमें से बहुभाग असंख्या बहुभाग मारणांतिक करते हैं, एक केंद्रीय भी इन सब वो मारणांतिक से पूरा लोग भरा हुआ है। हाँ, अनंत जीव कर रहे हैं एट ए टाइम, नो ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक जाम नहीं होता उधर और ऐसा भी नहीं है मरने वालों को अभी कुछ रोक रखो, थोड़ा उधर जगह नहीं है थोड़ा रुक कोई स्वर्ग में गया वापस भेजते जाओ, अभी थोड़ा बाकी है तुम्हारा, अन्य मतों की कहानी है, ऐसा कुछ नहीं है, पोल पट्टी कहीं नहीं है। ये आगे बढ़ते 103 पेज पर आ गए, नया पैराग्राफ। पता नहीं क्या करता है हा? उन लोगों को मरण नहीं होता है, वो सबके लेखा जोखा लिखते बैठते हैं मनोयोगी और वचन योगी जीवों में उपपाद पद नहीं होता, लिखा है ना? हाँ, वो हमारे में से कोई ख्याल में नहीं आवे तो इसलिए लिख के रखा हूँ। सासाधन समय दृष्टि गुण स्थान से लेकर समुद्घात रहित लिखा, केवली संयोग केवली गुण स्थान तक प्रत्येक गुण स्थान वर्ती, ये समुद्घात वालों को क्यों छोड़ा? योग रहता है, परंतु कपाट में तो औदारिक मिश्र है, प्रतर लोक पुरण प्रतर में तो कारमान का योग है और दंड में तो औदारिक का योग है, इसलिए मनोयोग वचन योग को वहां से निकाल दिया। समुद्घात रहित संयोग केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान वर्ती मनोयोगी और वचन योगी जीवों का क्षेत्र मूल ओह क्षेत्र के समान है। मूल ओह यानी जो गुणस्थानों का क्षेत्र बताया है वही उन गुणस्थानों में मनोयोगियों का क्षेत्र क्षेत्र
ले सकते
हैं। कायोग में लेंगे। विशेष बात यह है कि संसाधन समय दृष्टि और असंयत समय दृष्टि मनोयोगी और वचन योगी जीवों के उपपाद पद नहीं होता। उपपाद की बात हमने क्या देखा था, मन उपपाद में मनोयोग वचन होगा था ही नहीं, इन दो ही गुणस्थानों को क्या क्यों लिया, अन्य गुणस्थानों के साथ कोई उत्पन्न ही नहीं होता ना, तीसरे के साथ ना पांचवे छठे सातवें वगैरह के साथ, वहां तो उपपाद का सवाल ही नहीं था। उपपाद कौन कौन से गुणस्थान में संभव है, उपपाद वाला क्षेत्र पहला दूसरा और चौथा, तो पहले वाले को तो लिया था, परंतु पहले वाले में भी मनोयोग में नहीं लिया था। मनोयोग वचन योग तो उपपाद में होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर फिर भी बताया, पहले मिथ्या दृष्टि में बताया कि मनोयोग और वचन योग उपपाद में नहीं होता है, उनमें उपपाद नहीं, अब यही बात इन दो गुणस्थानों के लिए बताए, क्योंकि सासाधन से लेकर संयोग केवली तक का कथन कर रहे हैं, उनमें से इनमें जो अन्य मूल ओघ में उपपाद लिया था यहाँ उपपाद नहीं लिया, इतनी बात, क्योंकि ये कहे ना मूल ओघ के समान, तो हम वहां पढ़ने गए तो वहां तो उपपाद बताया था, पर वो ये बात ख्याल में लेना है कि वहां भले बताया है हाँ, परंतु यहाँ मार्गणा की बात है, यहाँ उपपाद नहीं होगा, मनोयोगी और वचन योगी है इसलिए। अब आगे बढ़ते 30 नंबर का सूत्र, काय योगीसु मिच्छा इट्ठी ओघम, काय योगियों में मिथ्या दृष्टि जीवों का क्षेत्र ओघ के समान सर्वलोक है। स्वस्थान स्वस्थान, अभी स्वस्थान भी पूरा लोक है, क्योंकि काय योग कहने से तो सारे काय योग आ गए, सब काय योग इन जनरल बताएं, फिर उसमें से अलग अलग भेद करके बताएंगे वो बात अलग है। तो स्वस्थान स्वस्थान, वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और उपपादगत काय योगी मिथ्यादृष्टि जीव सर्वलोक में रहते हैं। विहारवत, विहारवत को अलग क्यों लिया, वो स्वस्थान के साथ क्यों नहीं लिया, मारणांतिक उपपाद तो पूरा हाँ, हाँ एक इंद्रियों को वो नहीं है हाँ, इसलिए वो विहार करने वाले कौन होंगे, तो त्रस होंगे, तो त्रस की अपेक्षा वो तो लोक का असंख्यात अभाव हो जाए। और वैकृत समुद्घातगत काय योगी मिथ्या दृष्टि जीव, अब जो है यहाँ काय योगी कहेंगे तो उसमें तो विहार करने वाले जो है द्विंद्रिय से लेकर, अकेला काय योग अकेला भी नहीं है, वचन योग काय योग ऐसा भी होगा। सामान्य लोक आदि तीन लोगों के असंख्यातवे भाग में, तिर्यक लोक के संख्यातवे भाग में और अढ़ाई द्वीप से असंख्यात गुणे क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ पर अपवर्तना जान करके करनी चाहिए, अपवर्तना यानी पहले हमने देखा स्वस्थान स्वस्थान वो संख्या दो भाग है फिर वगैरह वगैरह, उस तरह से उसका प्रमाण बताना चाहिए। अब काय योगी में मिथ्या दृष्टि हो गए, अब काय योगी में नेक्स्ट बाकी गुणस्थान, शासन सम्मादिथि पौड़ी जाव क्षीण कसाय विदराग छदुमत्था केवड़ी खेते लोगस्य असंख्य यदि भागे, यहाँ केवली को छोड़ा है, क्यों, पूरा लोक होगा ना, इसलिए संयोग केवली की बात अलग बताएंगे। तो सासाधन समय दृष्टि गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय वितराग छद्मस्थ गुणस्थान, सोनीबेन आपको मालूम है इतना लंबा नाम ये कौन से गुणस्थान का है, बारवा बारवा क्षीण कषाय ने अभी वो तो बिल्कुल क्षय हो चुका है वहां पर कर्मों का, कषाय कर्म वगैरह यानी पूर्ण वितरागी है, फिर भी पूर्ण वितरागी फिर भी कैसे है, छद्मस्थ है, सर्वज्ञ नहीं हुए, सदमस्त किसको कहते? हाँ, केवल ज्ञान नहीं हुआ है परंतु वीतरागी पूरे हुए हैं। बारवा गुणस्थान का एक अंतर्मुर्त काल पूर्ण वीतरागता है, यानी वो तेरहवे में कुछ वीतरागता बनने वाली नहीं है, पर यहाँ अल्पज्ञ है और तेरहवे में जाते ही सर्वज्ञ होगा, इसलिए इसका पूरा नाम क्या है? क्षीण कषाय वीतराग छद्मस्त। ग्यारहवें गुणस्थान को क्या कहेंगे? उपशांत मुह, उपशांत कषाय वीतराग छद्म, वो भी पूर्ण वीतराग है परंतु वो तभी नियम से नीचे आने वाले हैं, एक अंतर्मूर्त तक के लिए पूर्ण वीतराग। गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थान वर्ती का योगी जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं। योग का अभाव होने से इस सूत्र में अयोगी केवलियों का ग्रहण नहीं किया गया है, शेष सूत्र का अर्थ सुगम है। अब हमेशा जैसे सहयोग केवली की बात अलग से बता रहे हैं 32 नंबर पर, सहयोगी केवली ओघम, का योग वाले सहयोग केवली का क्षेत्र ओघ सहयोगी केवली के क्षेत्र के समान है, क्योंकि जब वो कर रहे हैं समुझा तो काय योग में फिर दंड वगैरह किया औदारिक मिश्र काय योग, इन जनरल उसको काय योगी कहेंगे। देखो शंका सासादनादि गुणस्थान प्रतिपन्न, देखो मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि कह देते हैं और दूसरे से लेकर सभी जीवों को कहेंगे ये गुणस्थान प्रतिपन्न जीव है, तो सासादनादि गुणस्थान प्रतिपन्न सभी जीवों का एक योग क्यों नहीं किया? एक योग ने उनका एक ग्रुप एक जोड़ क्यों नहीं किया? एक योग ने वो काय योग वचन योग वो वाला नहीं लेना, हाँ, अर्थात पूर्वोक्त शासन सम्मा इट्टी पहुड़ी इत्यादि सूत्र का और इस सहयोगी केवली ओघम सूत्र का एक समास क्यों नहीं किया? बताए ना, एक जोड़ रूप उसको समास कहते, एक ग्रुप क्यों नहीं बनाया उसका? समाधान है, क्योंकि सहयोगी केवली के क्षेत्र में सहयोगी केवली लोक के असंख्यात बहुभागों में और सर्वलोक में रहते हैं, इस प्रकार का विशेष कथन पाया जाता है। यानी वो तो तीन कथन आते हैं, लोक का असंख्यात भाग, उनका रहने का ठिकाना स्वस्थान विहार व स्वस्थान, और फिर असंख्यात बहुभाग और पूरा लोक। यानी वो असंख्यात बहुभाग और पूरा लोक ही विशेष कथन है ना, और बाकी जो जनरल कथन है लोक का असंख्यात भाग वो तो है ही है, इसलिए उक्त दोनों सूत्रों का एक योग नहीं किया, एक योग यानी एक ग्रुप नहीं बनाया, उसी सूत्र में इसको नहीं डाला, इसको अलग से सूत्र बना दिया। अब ये तो काय योगी इन जनरल बात की, अब उसका एक एक भेद लेंगे। तो इसे ओरालीय काय योगी सु मिथ्या इट्ठी ओघम, औदारिक काय योगियों में मिथ्या दृष्टि जीवों का क्षेत्र ओघ के समान सर्वलोक है। देखो जरा हम देख लेते हैं, औदारिक काय योगियों में गुणस्थान कौन कौन से? 14 वाले को कौन सा होगा? 13, 14 वाला अयोगी है ना, 1 से 13 बराबर। औदारिक मिश्र के जरा सोच कर बता ना, ये नए लोगों को पहले, पुराने लोग कोई नहीं बताएंगे। औदारिक मिश्र का योग गुणस्थान आपको बताना है, आप बताएंगे? पहला, दूसरा, चौथा
और
तेरवा। औदारिक मिश्र किसको होगा? सभी जो मनुष्य 3 इंच में जन्म लेते हैं तो शरीर पर्याप्ति तक तो सबको औदारिक मिश्र होगा ही होगा, सारे लब्धि अपर्याप्त होंगे तो औदारिक मिश्र ही होता है, उनका तो दूसरा कुछ होता ही नहीं, एक बात ख्याल में आई? और फिर तो उसके साथ मरकर भी आने वाले हैं ना, तो पहले गुणस्थान, दूसरा है, चौथा है। सहयोग केवली को हमने देखा था कपाट समुद्रघात में होता है, और वैक्रेक और वैक्रेक मिश्र के गुणस्थान बताने आपको, वैक्रेक कायोग के गुणस्थान कौन से होंगे? 1 से 4 देवनारकियों के होता है, और वैक्रेक मिश्र में 1, 2 और 4 ये हो गए, औदारिक हो या वैक्रेक। आहारक के तो मालूम है ना, आहारक आहारक मिश्र छठा गुण स्थान। अब कारमान का योग में तेजस आहारक भी उन्हीं के होता है। हम कायुग की बात करें ना, उनमें कौन से पद है वो नहीं अभी पूछते हुए में, पर उनमें ही हो गए। कारमान कायुग में गुणस्थान, कारमान कायुग कब होता है? मरण के बाद जब मोड़ सही जाते तब होता है, या केवल ही समुद्रात में होता है?
तो
एक दो चार और तेरह ख्याल में। अब देखते देखो, एक ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। औदारिक कायोगियों में मिथ्या दृष्टि जीवों का क्षेत्र ओघ के समान सर्वलोक है। यानी हम कहेंगे मिथ्या दृष्टि कहाँ है, तो पूरे लोक में। औदारिक कायोगी कितने कहाँ है, पूरे लोक में। कि सूक्ष्म पर्याप्त भी पूरे लोक में है ना, उनके औदारिक कायोग वहां पर भी होगा। तो स्वस्थान स्वस्थान वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और मारणांतिक समुद्घात गत ये औदारिक कायोगी मिथ्या दृष्टि जीव सर्व लोक में रहते हैं। ये यहाँ उपवाद क्यों क्यों छोड़ा? उपपाद में उपपाद को क्यों छोड़ा? उपपाद दंड को क्यों नहीं लिया? क्षेत्र में हम उपपाद को भी लेते हैं हमेशा, यहाँ क्यों नहीं लिया? वहाँ कारमान का योग होगा, क्योंकि दूसरा दंडा भी पहला है ना, एक पहले मोड़ तक पहुंचा है। अभी वो दूसरे में वो दंड पड़े हैं उसके, तो वहां कारमान का योग चल रहा है, क्योंकि मोड़ वाला है ना और पहले मोड़ तक पहुंचा है, ऐसा जीव लेना है। एक समय में पहुंचाने वाले की तो डायरेक्ट वो दरिक मिश्र चालू हो जाता है, उसका उपपद लेंगे तो। तो यहाँ औदारिक का योग में उसको छोड़ा, बाकी लिए तो स्वस्थान वेदना कषाय मारणांतिक ये पूरे लोक में रहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म पर्याप्त एकेंद्रीय जीव सर्व लोकवर्ती क्षेत्रों, इसलिए पर्याप्त को लिया। अपर्याप्त तो रहेंगे, उसमें औदारिक मिश्र होगा, हमें औदारिक काय योग चाहिए, वो पर्याप्त जीवों के होगा। तो सूक्ष्म जो पर्याप्त है कौन से वाले, कौन से काय वाले? वायु कायिक के अग्नि कायिक के कौन से कि निगोद कौन से पूरे लोक में कौन से हो गए? निगोद हमें वही तो पूछ रहे ना। पांचों सूक्ष्म हो गए, लोगों को ऐसा लगता है केवल निगोद ही सर्वत्र है। पांचों ही कायिक सूक्ष्म जीव पूरे लोक में है, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म अग्नि कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक, सूक्ष्म जल कायिक, सारे पर्याप्त। पर्याप्त इसलिए लिया कि औदारिक कायोग लेना है। अब आगे किंतु उक्त जीवों के उपपाद पद नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर औदारिक कायोग से निरुद्ध जीवों का, निरुद्ध ने युक्त जीवों का क्षेत्र बताया जा रहा है। विहारवत स्वस्थान वाले औदारिक कायोगी जीव, विहारवत स्वस्थान वाले औदारिक कायोगी हो गए ना, कौन हो गए? देह हो गए कि नारकी हो गए? मनुष्य तीर्य देवनारकियों का औदारिक कायोग नहीं होता। सामान्य लोक आदि तीन लोगों के असंख्यातवे भाग में तीर्यक लोक के संख्यातवे भाग में रहते हैं, क्योंकि समस्त त्रस पर्याप्त राशि के पर्याय राशि नहीं पर्याप्त राशि के संख्यातवे भाग का ही संचार होता है, ऐसा गुरु का उपदेश है। यानी विहार करने वाली राशि जो है संख्यात विभाग प्रमाण होती। उक्त औदारिक कायोगी मिथ्या दृष्टि जीव दहाई द्वीप से असंख्यात गुण क्षेत्र में रहते हैं। वैक्रिक समुद्घातगत, विहार की बात हो गई, अभी वैक्रिक की बात बता रहे। वैक्रिक समुद्घातगत औदारिक कायोगी मिथ्या दृष्टि जीव सामान्य लोक आदि चार लोगों के असंख्यात विभाग में और ढाई द्वीप से असंख्यात गुण क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि औदारिक कायोग से निरुद्ध होने पर यानी युक्त होने पर क्षेत्र का वर्णन करते समय वैक्रिक कायोगी जीवों के होने वाला वैक्रिक समुद्घात असंभव है। क्योंकि औदारिक कायोग से युक्त होने पर क्षेत्र का वर्णन करते समय यानी औदारिक कायोग सहित क्षेत्र बताना है। वैकृत कायोगी जीवों के होने वाला वैकृत समुदात असंभव, वहाँ वैकृत कायोगियों के होने वाला वैकृत समुदात यहाँ नहीं लेना है, औदारिक वालों का लेना है। औदारिक शरीर के साथ विक्रिया करने वाले जीव लेना है, वैकृत शरीर के साथ विक्रिया करने वालों की बात यहाँ नहीं है, ये बात कहना है। वर्गणा तो आहार वर्गणा ही होती है सबकी, परंतु ये औदारिक की जो रेंज है वर्गणाओं की उसी से ये वैकृत शरीर बना है। अभी विशेषात हम कल पढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लो पालो सो वाणी मस्त सनम सदा देत हो।